नमस्कार श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का स्वागत और आज आपके साथ मैं हूं दिव्या तोमर। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ सचिन कुमार। सचिन, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद दिव्या।
तो आइए सुनते हैं अभी तक के मुख्य समाचार खेल जगत के। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 आज से न्यूयॉर्क में शुरू। सुमित नांगल और रोहन बोपन्ना पर होंगी सबकी निगाहें। पेरिस पैरालंपिक का काउंटडाउन शुरू। एशियाई पैरा खेल स्वर्ण विजेता तीरंदाज शीतल देवी से भारत को पदक की उम्मीद। फुटबॉल की सैफ अंडर 20 प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में बांग्लादेश ने भारत को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। डूरन कप के सेमीफाइनल में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने शिलोंग लाजोंग एफसी को हराया। कल दूसरे सेमीफाइनल में मोहन बागान सुपर जायंट और बेंगलुरु एफसी होंगे आमने सामने। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 आज से न्यूयॉर्क में शुरू हो रहा है। सचिन, सबकी निगाहें भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नांगल और रोहन बोपन्ना पर रहेंगी।
जी बिल्कुल दिव्या, क्योंकि देखिए सुमित का आपने जो नाम लिया है उनके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है टूर्नामेंट कि वो पहले ऐसे खिलाड़ी बन रहे हैं 5 साल बाद जो चारों ग्रैंड स्लैम में खेलने उतरेंगे सिंगल्स में। बिल्कुल। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है भारतीय टेनिस को देखते हुए, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी रैंकिंग कभी खिलाड़ी की मुश्किल से मिलती है कि वो अपनी जगह वहां बना सके। तो पहली बात ये, लेकिन दूसरी बात ये कि उनको कम से कम इस बार ये कोशिश करनी होगी कि वो अभी तक 3 जो ग्रैंड स्लैम हुए हैं उसमें पहले राउंड से आगे नहीं पढ़े हैं, तो उसको कम से कम उन्हें इस मिथक को तोड़ना होगा। इस बार इतना अच्छा प्रदर्शन उन्हें करना चाहिए कि कम से कम 2-3 राउंड आगे तक जाएं, जिससे कि कुछ लगे कि सिंगल्स में कोई अच्छा प्रदर्शन।
बिल्कुल, काफी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद
जाती है। बिल्कुल, क्योंकि वो हमारे यहाँ के टॉप रैंक प्लेयर हैं सिंगल्स में, तो वो जिस परंपरा को वो उनको निभाना चाहिए, जिस तरह से पहले हमारे पास सिंगल्स में थे कुछ खिलाड़ी, जैसे लिएंडर पेस की हम बात करें या महेश भूपति ने भी कुछ दिन सिंगल्स खेला, बाद में वो जरूर डबल्स में आ गए, लेकिन जब वो खेल रहे थे तो उनका प्रदर्शन ठीक ठाक नजर आता था। फिर महिलाओं में सानिया मिर्जा ने आके वो हमारी कमान संभाली और कुछ टूर्नामेंट में उन्होंने ग्रैंड स्लैम में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। एक टूर्नामेंट में तो सेरेना विलियम्स के खिलाफ 4th राउंड तक खेलने का उनको मौका मिला। तो इस तरीके के प्रदर्शन लेकिन अब देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि टेनिस में वो जो एक गैप आ गया है उसको भरने की जरूरत है, और यही खिलाड़ी हैं जो आगे चल के कुछ कर सकते हैं। और काफी अच्छा, अभी इनकी 73वीं रैंक है, तो मुझे लगता है कि इनसे पूरी उम्मीद भी है।
डबल्स के जैसे मुकाबले में रोहन बोपन्ना है, उनके साथ ही है मैथ्यू एबिडन ऑस्ट्रेलिया के, तो उसमें आपको क्या लगता है इस बार कैसे प्रदर्शन की उम्मीद है पिछले और प्रदर्शन को देखते हुए?
देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन में तो उन्होंने इतिहास रचा था और वो बहुत बड़ी उपलब्धि थी उनकी, क्योंकि सबसे ज्यादा उम्र के वो ऐसे खिलाड़ी बने थे जिन्होंने डबल्स का ग्रैंड स्लैम जीता। लेकिन उसके बाद के कुछ प्रदर्शन उनके कुछ खास नहीं रहे, जबकि जोड़ीदार तो उनके एबडेन ही थे। और ओलंपिक में चूंकि उनको भारतीय जोड़ीदार के साथ खेलना था, तो वहां पे भी क्यों, मुझे लगता है कि शायद इस वजह से भी हो सकता है कि जिस खिलाड़ी के साथ आप लगातार नहीं खेलते हैं तो एक सामंजस्य या एक तालमेल नहीं होता है, क्योंकि डबल्स जो है वो थोड़ा सा तालमेल वाला ज्यादा है।
इस बार यूएस ओपन का जो मतलब ये मुकाबला है काफी दिलचस्प और भी होने वाला, बिकॉज इसमें नोवाक जोकोविच जो कि 24 ग्रैंड स्लैम विजेता है,
सबकी निगाहें उन पे होंगी क्योंकि वो मोस्ट डेकोरेटेड प्लेयर हो सकते हैं टेनिस के अगर वो यहाँ पे खिताब जीतते हैं, क्योंकि उनके
और अभी हाल ही में पेरिस ओलंपिक
जी यही मैं कहने जा रहा था कि उनके कैबिनेट में एक बस ओलंपिक गोल्ड की ही कमी थी।
जी जी जी,
एक बार वो ओलंपिक में वो पदक जीत चुके हैं लेकिन वो गोल्ड नहीं था, तो इसी की कमी थी। तो उसके साथ अब अगर वो यहाँ पे अगर ये खिताब जीतते हैं तो ये सबसे ज्यादा खिताब जीतने वाले खिलाड़ी हो जाएंगे। अभी तक वो मार्गरेट कोर्ट के साथ बराबरी पे चल रहे हैं खिताब जीतने के मामले में, पुरुषों में वो सबसे आगे हैं। तो निश्चित तौर पे उन पे सबकी निगाह होंगी और उनका लगा, और ओलंपिक में जिस तरह से उन्होंने खेल दिखाया था दिव्या, मुझे नहीं लगता है कि हालांकि टक्कर तो मिलेगी, लेकिन जिस तरह जो जज्बा है उनके अंदर अभी भी इस उम्र में भी खेलने का, वो बहुत जबरदस्त है।
इसके अलावा भारतीय खिलाड़ी यूकी भामरी और रोहन बोपन्ना एन श्रीराम बालाजी भी इस मुकाबले में, इस टूर्नामेंट में भाग लेंगे, और साथ ही फ्रेंच ओपन और विंबलडन विजेता स्पेन के कार्लोस अल्कराज भी एक्शन में होंगे।
अल्कराज तो उनके जोकोविच के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी हैं इस समय देखा जाए
तो, बिल्कुल, क्योंकि उन्हीं से पहले
जी बिल्कुल और हाँ। उससे पहले फाइनल में उन्हीं का दोनों का मुकाबला भी हुआ था फ्रेंच ओपन में
हाँ।
तो उसको देखते हुए बलकरा चूंकि मात्र 22 साल के हैं उनके पास
एक्सपीरियंस है कहीं ना
जोकोविच के पास एक्सपीरियंस है लेकिन वो युवा है उनके पास ऊर्जा है और खेल का जो है जज्बा है लेकिन जब ये दोनों सामने आते हैं तो एक रोमांचक मुकाबला तो देखने को मिलता ही है दिव्या। तो मुझे लगता है कि हालांकि इस बार कुछ ऐसा कुछ बना है हाँ। कि कई कई बड़े खिलाड़ी मिल सकते हैं फाइनल से पहले
बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि ये भारत हाँ, भी बहुत अच्छे रहे और भारत को अच्छे बैडमिंटन प्लेयर्स जो है सॉरी टेनिस प्लेयर्स जो है आगे जारी रहे इस तरीके से। पेरिस पैरालंपिक 2024 इस महीने की 28 तारीख से शुरू होगा और अगले महीने की 8 सितंबर तक जारी रहेगा। बुधवार को भव्य उद्घाटन समारोह के बाद 11 दिनों तक लगातार प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इस बार भारत ने पैरालंपिक खेलों के इतिहास में 84 एथलीटों के साथ अपना सबसे बड़ा दल भेजा है और एक वीडियो संदेश में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने भारतीय दल को शुभकामनाएं दी और नागरिकों से चीयर फॉर भारत के नारे लगाकर एथलीटों को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया।
पेरिस पैरालंपिक शुरू हो रहा है। भारत के अभी तक के सबसे बड़ा दल 84 पैरा जाबाज जो पैरालंपिक में अपना दमखम दिखाएंगे, वक्त है उन्हें प्रेरित करने का, उनका आत्मविश्वास बढ़ाने का। इस पैरालंपिक में बढ़ाए उनका हौसला और लगाए नारा चीयर फॉर भारत।
सचिन, चीयर फॉर भारत, और आपको क्या लगता है इस बार पैरालंपिक में हम पिछले पदक पिछले जो भी हमारे मुकाबले रहे उनके मुकाबले हम इस बार ज्यादा पदक लेकर
देखिए निश्चित तौर पे उम्मीद तो यही की जा रही है क्योंकि इस बार हमारा बड़ा दल भी है। हमने टोक्यो पैरालंपिक में 19 पदक जीते थे 5 गोल्ड के साथ, जिसमें
इस बार 25 की उम्मीद लगा सकते हैं।
25 की उम्मीद तो लगा के ही जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि हो सकता है उससे ज्यादा भी हो जाए क्योंकि बहुत बड़ा दल है। पिछली बार 54 खिलाड़ी थे, इस बार हमारे 84 खिलाड़ी हैं शायद, और उसी अनुपात में हमारे अधिकारी भी भेजे गए हैं और टीम के कोच हैं और कुछ निजी कोच भी भेजे गए हैं। तो ये सब चीजें क्या होती हैं कि प्रदर्शन को आपके बनाए रखने में बड़ी मददगार साबित होती हैं क्योंकि खिलाड़ियों के साथ कुछ भी दिक्कतें आ सकती हैं। आप हम समझते हैं कि जिनका ये खेल है वो पहले ही कुछ अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं खिलाड़ी, अगर उनको वहां पे मदद मिलती है और जो
इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अगर उनको बहुत
और पीसीआई के जो प्रेसिडेंट हैं वो खुद चूंकि पैरा एथलीट रह चुके हैं, जेवलिन थ्रो के वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं देवेंद्र झाझरिया, और वो वहां पे खिलाड़ियों की मदद के लिए वहां मौजूद होंगे। तो इन सब चीजों से बहुत ही मुझे लगता है कि खिलाड़ियों के लिए आसान होगा और पदकों की संख्या जरूर बढ़ेगी। दिव्या,
बिल्कुल हम ऐसी उम्मीद करते हैं। और इस बार एशियाई पैरा खेलों में स्वर्ण पदक विजेता तीरंदाज शीतल देवी से 28 अगस्त को शुरू होने वाले पेरिस पैरालंपिक में भारत को काफी उम्मीदें हैं। शीतल देवी को फोकोमेलिया नामक एक दुर्लभ जन्मजात विकार है। वो बिना हथियारों के प्रतिस्पर्धा करने वाली दुनिया की पहली और एकमात्र सक्रिय महिला तीरंदाज हैं। वहीं पैरा निशानेबाज रुद्रांश खंडेलवाल पेरिस पैरालंपिक में पदार्पण के दौरान स्वर्ण पदक जीतने का लक्ष्य बनाए हैं और उनके जीवन का मंत्र है किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहना और अपनी क्षमता पर भरोसा बनाए रखना। काठमांडू में फुटबॉल की सैफ अंडर 20 प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में बांग्लादेश ने भारत को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया है। पहले हाफ में बांग्लादेश ने एक गोल कर बढ़त बनाई, दूसरे हाफ में भारत के रेकी मेतई ने एक गोल कर बराबरी की। बांग्लादेश की तरफ से पहला गोल असदुल मौला ने किया। इस हार को क्या मतलब किया, पचाने वाली हार?
नहीं देखिए, हो सकता है क्योंकि इस तरीके के परिणाम देखने को मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश कोई बहुत खराब टीम है या बहुत नीचे की टीम है और हमें सैफ में इस तरीके के हमें मुकाबले देखने को मिलते हैं, लेकिन चूंकि हम गत चैंपियन थे हमें एक अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए था, कम से कम फाइनल तक आना चाहिए था और एक एक से ड्रॉ रहने के बाद पेनल्टी शूट आउट में दिव्या कुछ भी हो सकता है। ये हमने अभी पेरिस में हॉकी में भी देखा है कि उसमें चीजें हमारे पक्ष में रही क्योंकि हमारे गोलकीपर दीवार की तरह साबित हुए
हाँ।
लेकिन इस मैच में बांग्लादेश के गोलकीपर दीवार साबित हुए, उन्होंने हमारे दो पेनल्टी जो है हाँ। जो भारतीय खिलाड़ियों की ओर से थी वो रोकी, तो निश्चित तौर पर परिणाम जो है वो बदल जाना था और वो लोग 4 गोल करने में सफल रहे थे, यानी कि हमारे गोलकीपर उस तरीके का प्रदर्शन नहीं कर पाए जैसे बांग्लादेश के गोलकीपर ने वहां करके दिखाया। तो पेनल्टी शूटआउट में देखिए कुछ भी संभव है, तो वो उस तरीके का फिर परिणाम आपके सामने है कि हाँ। थोड़ा सा अखरता तो है ही जो आप कह रही थी कि भाई थोड़ा खलने वाली चीज है, इतनी आप मेहनत करते हैं और लगातार बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया था इस मैच में। पहला गोल उनकी तरफ से आया 36वें मिनट में, 75वें मिनट में हमने भारत की ओर से बराबरी करी, कैप्टन रिकी ने गोल किया, तो उसके बाद उम्मीद थी कि भाई निर्धारित समय में ही परिणाम निकल आएगा, लेकिन वो संभव नहीं हुआ। और जब आप पेनाल्टी शूट आउट में जाते हैं तो दिव्या, जैसा मैं पहले कह रहा था, फिर कुछ भी संभव है। आप गोल करने की कोशिश करते हैं और सामने जो है जो खिलाड़ी है विपक्ष का, वो पूरी कोशिश जी जान लगा देता है कि वो गोल ना होने दे।
हालांकि भारत शीर्ष मतलब जो ग्रुप बी था उसमें काफी
बिल्कुल वो तभी हम सेमीफाइनल खेल रहे थे, लेकिन बात वही है कि जब हम फाइनल में नहीं पहुंचे तो वो मेहनत हमारी फिर जो है वो उस तरीके से जाया हो गई, क्योंकि हाँ क्योंकि सेमीफाइनल में हमें वो रिजल्ट नहीं मिला जिसकी हमें अपेक्षा थी या उम्मीद थी।
वहीं फुटबॉल के टूर्नामेंट डूरेंट कप के सेमीफाइनल में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने आज शिलोंग लाजोंग एफसी को 3-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। कल दूसरे सेमीफाइनल में मोहन बागान सुपर जायंट और बेंगलुरु एफसी के बीच मुकाबला कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में होगा। इस मैच में पूर्व भारतीय कप्तान सुनील छेत्री बेंगलुरु एफसी की जीत की संभावना के लिए अहम खिलाड़ी होंगे। अब मोहन बागान जो कि 22 ऑलरेडी जीत चुका है डूरेंट कप,
जी बिल्कुल,
और उनके सामने बेंगलुरु की टीम जो कि
देखिए बेंगलुरु बड़ी टीम है, क्योंकि मोहन बागान लगातार इसलिए जीता क्योंकि मोहन तो बागान बहुत बड़ा क्लब है।
कल का मुकाबला बड़ा दिलचस्प
होने वाला है और आज का मुकाबला भी बहुत दिलचस्प था, जिसमें कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने लाजोंग को हरा शिलोंग लाजोंग को हराया है 3-0 से। तो इसके रोचक होने की एक चीज ये देखिए आप कि ये मैच जो है वो कोलकाता में होना था, लेकिन इसका जो दोनों टीमों का जो ये दबाव था कि नहीं इस मैच को नॉर्थ ईस्ट में किसी ऐसी वेन्यू पे कराया जाए जहां हमारे समर्थक या हमारे दर्शक इसका लुत्फ ले सकें, तो इसलिए शिलोंग को चुना गया और एक दिन और मुकाबला आगे बढ़ा भी दिया गया और ये मैच हाउसफुल था। तो आप ये देखिए कि फुटबॉल की लोकप्रियता किसी भी तरीके से कम नहीं है, अगर अच्छा फुटबॉल देखने को मिले तो लोग उमड़ते हैं स्टेडियम में। लेकिन थोड़ा सा दिन अच्छा नहीं था लाजोंग के लिए, आज उनका ड्रीम रन खत्म कर दिया नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। अब वो फाइनल में जो भी टीम अब जीतेगी, जो आप बता रही थी बेंगलोर या मोहन बागान, उनसे फाइनल खेलना है उनको।
जी बिल्कुल। और अब बात करते हैं आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 की। इसके लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है और भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद आज लीजेंड्स लीग क्रिकेट से जुड़ गए। उन्होंने शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की थी। धवन अब इंडियन प्रीमियर लीग के अलावा T20 लीग में भी खेल सकते हैं। कल से पुणे में शुरू होने वाले यूनिक्स सनराइज इंडिया जूनियर इंटरनेशनल ग्रैंड प्री बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ी अभिषेक कनपाला लड़कों और प्रकृति भरत लड़कियों की अगुवाई करेंगे। इसमें अंडर 19 लड़के और लड़कियों के सिंगल्स, डबल्स और मिश्रित डबल्स स्पर्धा खेली जाएंगी। इस टूर्नामेंट में 13 देशों के कुल 280 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इस वर्ष 2024 में चीन तिब्बत 5वीं ट्रांस हिमालयन इंटरनेशनल रोड साइकिलिंग एक्सट्रीम रेस का दूसरा चरण ल्हासा में 24 अगस्त को शुरू हुआ। कुल 10 विदेशी और 12 घरेलू साइकिलिंग टीमों के 150 से अधिक एथलीटों ने 90.34 किलोमीटर के एक्सट्रीम साइकिलिंग चुनौती में भाग लिया। और वहीं शतरंज के सिंगफील्ड कप के छठे दौर में अंतिम टूर्नामेंट में भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञान नंदा ने मौजूदा विश्व चैंपियन डिंग लिरेन के खिलाफ अपनी बाजी ड्रॉ खेली। विश्व चैंपियनशिप के चैलेंजर डी गुकेश ने फ्रांस के मैक्सिम वाचियर लाग्रेव के साथ एक और दिलचस्प ड्रॉ खेला, लेकिन रूस के इयान नोपिमनी याचची को हार का सामना करना पड़ा। वो अमेरिका के फेबियानो कारुआना से केवल 25 चाल में हार गए। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आप सचिन हमारे स्टूडियो में आए, आपने तमाम खेल खबरों पर हमसे बहुत अच्छी डिस्कशन किया, बहुत अच्छी बातचीत की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, चर्चा की।
धन्यवाद दिव्या।
इसके साथ ही अनुमति दीजिए स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को। नमस्कार।